الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ سلوک کا راستہ چار قدم ہے. سلوک کا راستہ چار قدم ہے. بعض نے کہا کہ جنت تک کا راستہ دو قدم ہے. جنت کا راستہ دو قدم ہے. تو پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اسی طرح مشائخ سلسلہ علی نقشبندیہ نے فرمایا کہ سلوک کا راستہ چار قدم ہے. ان کو کہتے ہیں سیور اربع، چار سیریں. جب تک سالک کو یہ چار سیریں نصیب نہ ہوں، اس کو اللہ کا وصل اور اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. ہر بندے کو جو واصل بنا یہ سیریں نصیب ہوئیں. تو یہ سیور اربع، چار سیریں، یہ مستقل ایک عنوان ہے. ان کو سمجھنا، بات چلتی ہے انسان کے قلب سے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو جو قلب پتھر کی طرح ہوتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پہلے قدم پر تو انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، ورنہ تو جسم ذکر کی پوزیشن میں بیٹھنے سے مانوس ہی نہیں ہوتا. بعض ہم نے دیکھا جو مغربی طرز کے لوگ ہوتے ہیں، زمین پہ بیٹھنا مشکل ان کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کرسی ہوگی تو بیٹھیں گے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ان کے جسم کے اعضاء بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہیں. اسی طرح جو عام مسلمان ہیں، ان کے جسم کے اعضاء ذکر کی ہیئت میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے. وہ ویسے تو بیٹھ سکتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مگر ذکر کی ہیئت میں بیٹھنا، اتیات میں بیٹھنا یا چوپڑی مار کے بیٹھنا، اس کے لیے میں نے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. شروع میں جو بندہ بھی بیٹھتا ہے، پانچ منٹ کے بعد یوں لگتا ہے کہ بس میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی رگ پھٹ جائے گی، اتنی شدید درد ہوتی ہے. مگر پھٹی تو آج تک کسی کی بھی نہیں، نہ ٹانگ ٹوٹی کسی کی بیٹھنے سے. یہ تاثرات ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جن آرٹریز سے انسان کا خون جا رہا ہوتا ہے سسٹم میں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بوجھ پڑنے سے بلاک ہو جاتی ہیں. ان کی بلاکیج جب زیادہ ہو جاتی ہے تو درد ہوتی ہے. کیوں درد ہوتی ہے؟ کہ انسان کا برین آلٹرنیٹ راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ادھر سے تو اب خون بند ہو گیا، اب خون تو پہنچانا ہے نا، تو وہ آلٹرنیٹ راستوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں اس وقت بوجھ نہیں پڑ رہا ہوتا، اس रास्ते बनने में फिर दर्द होती है। तो जो बंदा उस दर्द को बर्दाश्त कर ले और बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे, थोड़े अरसे के बाद जब पैरेलल रास्ते बन जाते हैं तो वो घंटों बैठ सकता है। चुनाचे वो मशायख जिन्होंने एक ही हैत में बैठने की मशक की, वो छः छः घंटे आठ आठ घंटे एक हैत पर बैठने के लिए आसानी महसूस करते थे, उनको मुश्किल ही नहीं पेश आती थी। कई हिंदू योगी एक ही हालत में महीनों बैठे रहते हैं, तो बदन उसके मुताबिक ढल जाता है। हमारे यहाँ हजरत शेख लतीफ मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह अकोड़ा खटक के बानी थे, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। उनकी आदत मुबारक थी कि वो बुखारी शरीफ का दर्स देते थे तो बुखारी शरीफ को नीचे मेज पे नहीं रखते थे बल्कि हाथ में उठाते थे। अब जो लोग समझते हैं जानते हैं उनको पता है कि बुखारी शरीफ 2-3 किलो का वजन है, ऐसे किताब मामूली तो नहीं है, भारी किताब है, बड़ी किताब। तो उसको हाथ में लेके बैठना मुश्किल काम है, मगर वो हाथ में लेके बैठते थे पहली बात। और दूसरी बात कि जब बुखारी शरीफ को पकड़ते थे तो बाजू को जिस्म पर नहीं रखते थे, यूं यूं हाथ करते थे, जैसे दुआ मांगने वाला होता है ना, ऐसे बुखारी शरीफ को ऐसे रखते थे। अब अत्तहियात में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बुखारी शरीफ हाथ में, उनका दर्श चल रहा होता था और वो हिले जुले बगैर उसी कैफियत में बैठे होते थे। तो लबा कभी दाएं हो रहे हैं कभी बाएं हो रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा, 3 घंटे हो गए, 4। हजरत एक ही कंडीशन में क्यों? उन्होंने शुरू से एक आदत बना ली और बैठते बैठते फिर वो बैठना आसान हो गया। तो ये इंसान के बदन की एक तरतीब है कि जिस कंडीशन में इंसान बैठने की कोशिश करेगा मुश्किल तो होगी लेकिन फिर बदन उसके लिए तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं सुम्मा तलीनो जुलूदहुम, कि इनकी जिल्दें इनके बदन फिर पहले नरम होते हैं जिक्र के लिए, और जब बैठने की आदत पड़ जाती है तो फिर कुलूबहुम इला ज़िक्रिल्लाह, दिल भी नरम हो जाते हैं। दिल की जो सख्ती की बुनियादी वजह है ना वो गफलत है। दिल की सख्ती की बुनियादी वजह गफलत है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस जमीन पर मुद्दतों काश्त ना हो वो सख्त हो जाती है, काबिल काश्त नहीं रहती। काश्त के लिए तो हल चलता रहे और नरम ठीक होती रहे तो वो जमीन अच्छी होती है, तो लंबा अरसा अगर काश्त ना हो तो जमीन काबिल काश्त नहीं रहती। दिल की जमीन भी ऐसे है कि अगर इस पर जिक्र ना किया जाए तो ये सख्त हो जाती है। और दलील कुरान अजीम शान में से अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक वला यकूनू कल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्ल, और ये अपने से पहले अहले किताब की मानिंद न बने। क्यों? फ़ताल अलैहिमुल अमद, उन पर तवील मुद्दत गफलत की गुजर गई, नतीजा क्या निकला? फकसत कुलूबहुम, उनके दिलों को सख्त कर दिया गया। तो ये जो फताल अलैहिमुल अमद है ना, हमारा असल में ये हाल है कि हम मुद्दतों जिक्र में नहीं बैठे, मुद्दतों हमें इसकी फिक्र नहीं हुई, तो उसकी वजह से दिल सख्त कर दिया गया। अब इसको नरम करने के लिए फिर बैठना पड़ता है। तो आप मुराकबे में जब बैठें तो चाहे आप चौकोर बैठें आलती पालती मार के या अत्तयात में बैठें, ये आपकी अपनी मर्जी है, मगर एक हैत में बैठें, शुरू में 5 मिनट बैठेंगे, फिर मुजाहिदे से 10 मिनट बैठेंगे, फिर 15 मिनट, जो 5 मिनट नहीं बैठ सकता था वो 2-2 घंटे भी बैठ जाएगा, आदत बन जाएगी। तो ये आदत बनानी पड़ती है, इससे डरना नहीं होता। पहले तो शैतान कहता है कि बस टांग टूट जाएगी, और जब बैठने की आदत पड़ गई तो फिर कहता है अब तो तेरी गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि हर वक्त सर झुका के बैठे रहने से गर्दन में भी दर्द होती है, मगर एक आदत पड़ जाती है। फिर घंटों इंसान बैठता है, सुकून पा लेता है उस कंडीशन में। तो आप ये समझें कि जो कल्ब जारी होना है उसकी पहली रिक्वायरमेंट कि हम मुराकबे में लंबा बैठने की आदत डालें। बाद ऐसे लोग थे कि इब्तदाई असबाक में रात को लेट के सोते ही नहीं थे, कई साल शुरू के ऐसे उनकी जिंदगी के गुजरे, बस हर काम से फारिग होके मुराकबे की हालत में बैठ जाते थे और उसी में ऊंग आती, नींद आती, वही रात की नींद होती थी। लंबा लेट के सोना सालों मौकूफ, बैठ के सोते, बैठ के नींद होती थी। अब चूंकि जिक्र की नीयत से बैठते थे तो चाहे वो 2 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे और नींद रहे, तो चार्जिंग होती रहती थी। आप बताएं, आजकल तो समझना आसान है कि सेल फोन अगर आप चार्जर के साथ लगा दें तो फिर उसके बाद स्क्रीन ऑन हो तो भी चार्जिंग होती है, ऑफ हो तो भी चार्जिंग होती रहती है, चार्जिंग पे तो फर्क नहीं आता। तो जब एक बंदा अपने चार्जर को लगा के मुराकबे की नियत करके बैठ गया, अब आंख की स्क्रीन ऑन हो तो भी चार्जिंग होगी, ऑफ हो जाए तो भी चार्जिंग होगी। तो जिनको ये जिक्र कल्बी नसीब हुआ उन्होंने पागलों की तरह मेहनत की इसके हुसूल के लिए। यानी दुनिया तो क्या कहेगी, हत्ता युकाल अन्नहु मजनून, घर के लोग कहते तो पागल हो गया है, लेट के सोता नहीं है, ऐसी भी कौन सी बात है। तो ये जो बात है ना, हत्ता युकाल अन्नहु मजनून, ये पूरी होके रहती है, चाहे बीवी कहे, चाहे घर के लोग कहें, चाहे बाहर के लोग कहें, चाहे मुखालिफ लोग कहें, मगर कहते सब है पागल है। पागलों की तरह जिन लोगों ने मेहनत की इस नेमत को पाने के लिए, अल्लाह ने फिर ये नेमत उनके लिए आसान कर दी। आज तक हमें जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं मिला कि मिनटों के मुराकबों से जिसकी निस्बत कभी हो गई हो। रोजाना चंद मिनट पढ़ने से तो प्राइमरी में बच्चा पास नहीं होता। आप बताएं ना, किसी बच्चे को आप 10 मिनट रोजाना पढ़ाएं तो साल के बाद पास हो जाएगा? और 10 मिनट रोज पढ़ने से तो प्राइमरी का इम्तहान पास नहीं होता, विलायत का इम्तहान क्या पास होगा। तो ये मिनटों को छोड़ें, ये तो मुब्तदी लोगों के लिए होते हैं कि जिनको मस नहीं, दीन पे उनकी तरतीब ही नहीं, उनको दीन के करीब करने के लिए डूएबल चीज बतानी होती है कि वो समझे कि हाँ भाई ये कर सकते हैं। अगर पहले दिन ही कह दें भाई घंटा तुमने बैठना है तो वो तो कहेंगे कि पता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता हमारे लिए। इसलिए ये जो 5-10 मिनट हैं ये बहुत ही मुब्तदी बंदे के लिए हैं कि वो इस तरतीब पे आ जाए, वाहशत महसूस न करे। जो आ गए और अब वो चाहते हैं कि हमें ये नेमत मिल जाए तो उनको तो फिर अब घंटों बैठना पड़ेगा। मैंने एक दिन पहले भी कहा कि जितना बड़ा अफसर होता है उसकी मुलाकात के लिए घंटों इंतजार में बैठना पड़ता है, और मुल्क के सदर से मुलाकात के लिए तो महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो मालिकुल मुल्क से मुलाकात के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा भाई? इंतजार तो करना ही पड़ना है। जो यहां इंतजार करके जाएगा तो कब्र से उठते ही वो मुस्कुरा कर मिलेंगे, भाई तुम तो वेटिंग रूम में बैठ के आए हो ना, तुम तो इंतजार करके आए हो ना, अब तो तुम्हारी बारी है। और जो बैठे ही नहीं होंगे फिर उनको वहां इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार तो करना पड़ना है, हुस्न का दस्तूर है, इंतजार करवाता है। शहनशाहों की तरतीब है, इंतजार करवाते हैं। तो मालिकुल मुल्क भी इंतजार करवाता है, इसलिए वो भी चाहता है कि बैठो मेरी याद में। तो एक बात कि जिक्र कल्बी हासिल करने के लिए जो बंदा संजीदा है तो एक तो उसे बैठने की तरतीब बनानी पड़ेगी, चाहे तहज्जुद के बाद बनाएं, चाहे ईशा के बाद बनाएं, चाहे दिन में बनाएं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो सहूलत का वक्त है उस वक्त में बनाएं, मगर बैठें सही, टाइम खुला हो। जब आप बैठ गए तो अब सबसे पहली चीज क्या होगी कि शैतान शैतानियत दिखाएगा और वो बुरे ख्यालात, शहवानी शैतानी भरमार कर देगा। आप परेशान हो जाएंगे कि यार मुराकबे के बगैर ही अच्छे थे, कि मुराकबे के बगैर तो ऐसे ख्याल नहीं आते थे, जरा मुराकबे में बैठे तो क्या क्या तमाशे। ये असल में शैतान का हरबा है इंसान को मायूस करने के लिए। तो क्या होता है कि नया बंदा मुराकबे में सर झुकाता है, एक मिनट के बाद सर उठा देता है, बस जी, उससे नहीं बैठा जाता। इसको भी मुजाहिदा करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी मिसाल यूं समझें कि अगर किसी कमरे में बिल्ली ने पाखाना कर दिया हो तो जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे तो भूत तो आएगी। अब आप फौरन दरवाजा बंद कर दें तो भूत तो नहीं ना खत्म हो सकती। बू खत्म करने का एक ही तरीका है कि दरवाजा खोलें, बू को बर्दाश्त करें और नजासत को साफ करें, हमेशा के लिए खत्म। इसी तरह जब हम मुराकबे में बैठते हैं और दिल का दरवाजा खोलते हैं तो शैतान बिल्ली ने वहां नजासत की होती है, तो बू को देख के बंद करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहें। ये सोचें कि अगर इस दिल को मैं लेके अल्लाह के सामने गया तो क्या शक्ल दिखाऊंगा कि तुम्हारे दिल में ये कूड़ा क्रिकेट भरा हुआ है, यूं तुमने मेरे घर को बर्बाद किया, वीरान किया। तो बल्कि दिल में अफसोस हो कि मैंने बड़ी देर के बाद इस चीज को रियलाइज किया कि मुझे दिल को संवारना है, साफ करना है। तो बैठे रहे, जो ख्याल आता है बैठे रहे। होगा क्या कि पहले दिन 100 ख्याल आएंगे, फिर 99 हो जाएंगे, फिर 98 हो जाएंगे, फिर 97। ये ख्यालात घटते जाएंगे और जो हुजूरी और तवज्जो वाला टाइम है वो बढ़ता जाएगा, हत्ता कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जैसे ही सर झुकाएंगे अल्लाह की याद में आप डूब जाएंगे, इस्तिगराक की कैफियत हासिल हो जाएगी। फिर घंटों बैठेंगे, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो इसमें बैठना, और दूसरा वसावस से मत घबराना, और तीसरा कैफियत का ठीक होना। क्या कुछ लोग मुराकबे में बैठ के सांस से करने लग जाते हैं, ये सही तरीका नहीं है। जज्बा भी महसूस होगा और वारिफ्तगी भी महसूस होगी मगर दिल साफ नहीं होगा। दिल तो साफ होगा जब उस तरीके से करेंगे जो मशायख के ऊपर अल्लाह ने खोला है, ये इल्हामी तरीका है ना। तो रब्बे करीम ने जो इल्हाम फरमाया कि इस तरह करने से ये दिल साफ होता है, वो तो उसी तरह होगा। तो सांस से कुछ नहीं करना होता, जिस्म को हरकत नहीं ऐसे देनी होती, जबान से कुछ नहीं पढ़ना होता, بلکہ مراقبے میں یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. جیسے کیسٹ بجتی ہے نا اور آپ توجہ کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں سن رہا ہوں. یوں بیٹھنا پڑتا ہے. اب آپ جب اس طرح بیٹھیں گے نا تو کبھی نیند بھی آ جائے گی، کبھی خواب بھی آ جائے گا، کبھی ویسے کوئی نقشہ ہی شیطان دکھا دے گا. یہ ایک اور ٹریپ شیطان کا کہ اگر یہ شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشے دکھا کر ذرا خود پسندی کا مریض بنا لو. یہ سیکنڈ اٹیک ہے اس کا، یہ سیکنڈ اٹیک ہے. شیطان بدبخت دشمن ہے. کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، یکدم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، عبدالقادر اب ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور قلم تمہارے لیے اٹھا دیا گیا. یعنی اب تم جو مرضی کرو، اب ہم تم سے راضی. تو جیسے ہی یہ آواز آئی نا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ موت تک کرنا ہے. اور یہ تو پھر شیطانی ہو سکتا ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ اب جب تم کرو قلم اٹھا دی گئی. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ. تو شیطان تھا، بھاگا، مگر جاتے ہوئے بیک فائر کر گیا. کیا کہنے لگا کہ عبدالقادر میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرایا، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. میں نے اس ترتیب سے سینکڑوں اولیاء کو برباد کیا لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. انہوں نے پھر کہا دوسری مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ، او بدبخت اپنے علم کی نئی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا. اب بتائیں کہ جب اس راستے میں یہ ایسے باریک حملے کرتا ہے تو کتنا انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور کتنا پھر شیخ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں آئیں گے باز تو پھر نورانی نقشے اور فلان نقشے بنا کے پھر خود پسندی میں مبتلا کر دے گا. حضرت ہم تو جنت کے مناظر دیکھتے ہیں. بھائی مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا، اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رکاوٹ ہے. مراقبے میں صرف اللہ اللہ سننا ہے، اس کے سوا کچھ بھی اگر ہے تو وہ ٹریپ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹریپ ہے. مقصود ہے اللہ اللہ سننا. اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتی، اس کی ایک ترتیب ہے. تو وہ ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئیں؟ بھئی قرآن پی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری. تو ایک بدن کی روح ہے، और एक दिल की रूह है। वो जो दिल की रूह है ना, वो इस नूर को जज्ब करती है। जब हम तवज्जो करके बैठते हैं तो हमारा मुजगा जो है ना, ये तो है एक जिस्म, जो असल कल्ब है वो इसके अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो है जिस्म, असल इंसान इसके अंदर है, इसी तरह ये जो कल्ब है ये तो मुजगा है। अच्छा, हदीस पाक में जो आता है कि गुनाह करने वाले का दिल स्याह और नेक बंदे का दिल नूरानी, तो जो लोग ऑपरेशन करते हैं और पंपिंग हार्ट को अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो अगर सेहतमंद फासे को फाजिर होगा तो बड़ा अच्छा दिल होगा उसका देखने में, और मरियल किस्म का इबादत गुजार होगा तो देखने में उसका दिल बड़ा अजीब सा। तो वो मुजगा नहीं है जिसके ऊपर नुक्ते लगते हैं या नूर आता है, वो उस मुजगा के अंदर एक रूहानी दिल है जिसको अल्लाह ने दिल कहा। वो आलम अमर की चीज है। क्यों? इसकी दलील, दलील तो नस से होनी चाहिए ना। इसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इंसानों के दिल बैना इसाबिर रहमान, रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, युकल्लिबुहा कैफ यशा। अब रहमान की दो उंगलियों के दरमियान ये मुजगा तो नहीं ना कह सकते। वो जो असल है ना दिल, जो आलम अमर से आया, वो रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है। तो जिस तरह जिस्म में रूह आ गई, आप समझ ले कि उस रूह की आगे तफसीलात थी, एक तफसील दिल में भी आ गई। उस रूह को असल कल्ब कहते हैं। जो हमारा असल कल्ब है ना, ये उस मुजगा बर्तन के अंदर वो असल रूह है। तो जब हम बैठेंगे, जिक्र करेंगे तो वो रूह अंदर से निकलती है। ताला खुलता है दिल का, और पिंजरे का ताला खुले तो परिंदा निकलता है। जब दिल के ताले खुले तो फिर वो अंदर, जो पिंजरे के अंदर परिंदा था वो निकलता है। और कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। तो वो जो इंसान का रूह निकली गोया और ऊपर जाने लगी आलम अमर की तरफ, तो अब वो जो इंसान का मुजगा है ना, उसमें एक वाइब्रेशन सी फील होती है। ये साया है, वो असल है। जब असल जा रही है तो साये में भी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी ना। तो इसको कहते हैं तहर्रुक। दिल की दो हरकतें होती हैं। एक होती है दिल की पंपिंग, वो यूं होती है, यूं एक मिनट के अंदर 65 मरतबा, 70 मरतबा। तो वो तो पंपिंग है, पंपिंग ऑफ द हार्ट है कि खून पंप कर रहा है, बस वो इस फ्रीक्वेंसी पे होती है। ये बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान का कल्ब जारी होता है तो उसको एक तहर्रुक महसूस होता है। वो तहर्रुक क्या? कि एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन बिल्कुल ऐसे होती है। अब ये वाइब्रेशन कितनी तेज है, इस वाइब्रेशन की मिसाल यूं समझें कि अगर बस स्टार्ट करके खड़ी कर दी किसी ने और आप अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका पूरा जिस्म जो है ना, वो एग्जैक्ट पूरे जिस्म के अंदर आपको ये कैफियत महसूस हो। जब मुराकबा करते करते पूरे जिस्म में ये कैफियत आप महसूस करना शुरू कर दें, तो आप समझ लें कि अब मुझे तहर्रुक की नेमत अल्लाह ने अता फरमा दी। लेकिन तहर्रुक की नेमत से पहले इंसान को लतीफे के अंदर दर्द महसूस होती है। ये अक्सर सालकीन महसूस करते हैं और कहते हैं जी हम मुराकबे में बैठते हैं, हमें यहां दर्द होती है। भाई जब पिंजरे से निकलेगा परिंदा तो दर्द तो होगी, पूरी रूह निकलेगी तो फिर भी दर्द होगी, वो तो बहुत ज्यादा होगी। अब ये छोटी सी रूह निकल रही है तो दर्द तो होती है। तो ये दर्द अच्छी अलामत है। जो मुराकबे में बैठने वाले लोग इब्तदा में दर्द महसूस करते हैं, तो ये दर्द एक अच्छी अलामत है, ये बुरी अलामत नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं जी मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, हार्ट प्रॉब्लम तो आपको पहले से थी, वो तो अब पता अब चल रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये दिल की दर्द जो है ये जरा मीठी मीठी होती है, बियरेबल होती है, ऐसी नहीं होती कि बंदा बर्दाश्त ही ना कर सके, मगर होती है। मर्दों को भी, औरतों को भी, छोटों को भी, बड़ों को भी, तरतीब एक है। कुछ लोगों को जरा ज्यादा फील होती है, कुछ को जरा कम फील होती है, मगर होती सबको है। और फिर बैठे रहने से पहले दर्द महसूस होगी, फिर दर्द के बाद एक हरकत सी महसूस होगी, और यह हरकत बहुत तेज होगी। ये पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट से डिफरेंट हरकत है, इन दोनों को कंफ्यूज ना करें। बाल दोस्त मुराकबे में बैठते हैं और दिल की पंपिंग के साथ अल्लाह तसव्वुर में कर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह करना तो नहीं है मुराकबे में, अल्लाह अल्लाह सुनना है, तो दो डिफरेंट काम है। खुद अल्लाह अल्लाह नहीं करना, खुद अल्लाह अल्लाह करेंगे तो दिल की पंपिंग के साथ हम भी हरकत कर रहे होंगे। फिर खत लिखते हैं, हजरत मुझसे तो 10 मिनट के बाद मुराकबा नहीं होता। भाई तरीकेकार जो गलत है, इसलिए 10 मिनट से ज्यादा करना मुश्किल है। जब तरीकेकार ठीक होगा फिर घंटों बैठ सकेंगे। तो तरीकेकार यह है कि यूं समझें कि दिल बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, दिल के कान लगा के बैठें, तवज्जो से बैठें, पुरसकूनों के बैठें। पहले दर्द महसूस होगी, फिर दर्द के बाद कुछ तहर्रुक महसूस होगा। ये तहर्रुक एक लंबा अरसा चलेगा और ये तहर्रुक इतना वाज़े हो जाता है कि इंसान को मुश्किल महसूस होती है कई मरतबा। तीन लफ्ज याद रखें कि ये तहर्रुक बहुत लतीफ होता है, हल्का होता है, बहुत तेज और धक्के लगना ऐसा नहीं होता, बहुत लतीफ होता है और बहुत जमील होता है और बहुत लजीज होता है। तो ये तहर्रुक जो है ना, यानी जैसे गुदगुदी नहीं कई दफा बंदा महसूस करता, तो कई दफा बंदे इस पे हाथ रखता है अपने सीने पे खुद ही कि ये थोड़ा सा दब जाए तो मुझे जरा सुकून आ जाए। ये ऐसी कैफियत है। चुनांचे बहुत सारे लोग जिनके कुलूब जारी हुए, उन्होंने ये कैफियत एक तरह की बताई कि एक तहर्रुक महसूस हुआ। वो तहर्रुक ऐसा था कि बैठने को भी दिल चाहता था मगर उसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता था, तो दबाते थे हम कई मर्तबा। ऐसा होता है। जब ये अलामात हों तो इसका मतलब कि अब कल्ब अपनी मंजिल की तरफ सफर पर निकल पड़ा है। इसको कहते हैं सैर इल्लाह। अब इसकी तफसील तो मैं इंशाअल्लाह कल करूंगा, सयूर अरबा क्या है, लेकिन आज की इस महफिल में जिक्र कल्बी के बारे में ही कुछ तफसील बताई जाए ताकि बार बार आपको पूछने की भी नौबत न पेश आए कि ये जो तहर्रुक है यही वक्त के साथ साथ तज़क्कुर में तब्दील हो जाता है। पहले ये हरकत होती है, इंसान बैठा रहता है बैठा रहता है, फिर इसी हरकत के साथ एक इदराक शुरू हो जाता है कि जैसे अल्लाह 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 एक आवाज महसूस होनी शुरू हो जाती है। वो इंसान का दिल ही जिक्र करता है और इंसान का दिल ही उसे सुनता है, ये कान नहीं सुनते। बात समझे ना, दिल ही जिक्र करता है और दिल ही उसको सुनता है। और उसका सुनना, इसका ताल्लुक कश्फ के साथ है। कश्फ समाई भी होते हैं बसरी भी होते हैं, यानी देखने से भी कश्फ का ताल्लुक है। जैसे कुछ लोगों को जर्रात जो हैं वो पत्तों पे अल्लाह अल्लाह लिखा नजर आता है, तो ये बसरी हुआ, आंख से देखा। कई लोगों को जमीन के ढेले से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है तो ये समाई हुआ। जैसे खाज अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि हजरत को इतना जिक्र था हासिल कि कई मरतबा आप तहारत के लिए जाते थे तो ढेला मट्टी का इस्तेमाल करने के लिए उठाते थे तो छोड़ देते थे, फिर अपने शेख के पास आए, हजरत मैं तो ढेला इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा, क्यों हजरत मुझे वो जिक्र करता सुनाई देता है तो मैं नजासत कैसे साफ करूं उससे। तो जब ये बताया तो हजरत फजल कुश रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमान लगे अच्छा जाओ जाओ इस्तेमाल करो। उसके बाद फिर वो कशफ खत्म हो गया सिर्फ शेख के कह देने के ऊपर। तो कल्ब का जिक्र करना अलग चीज है और बंदे को वो सुनाई भी दे ये अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कई दफा गुनाह के करने की वजह से ये सुनाई देने वाला कश्फ खत्म हो जाता है, लुकमा मुश्तबे खा लिया खत्म हो जाता है, लेकिन शेख बातिन की नजर से जब देखता है तो उसको कल्ब जाकिर नजर आता है, को बंदे को खुद फील नहीं होता। चुनाचे बाद लोगों को देखा कि मामूलात भी करते हैं नेकी तकवा भी है, कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं होता, पता नहीं हजरत जी ने दूसरा तीसरा सबक दे दिया। भाई आपको तो इसलिए नहीं महसूस होता कि अभी आपको वो कश्फ हासिल नहीं है। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए वो एक उनका ऑडियो सिस्टम होता है, उसमें तिलावत हो रही होती है, लेकिन सुनता वही है कि जो उसको कानों से लगाता है, जो नहीं लगाता हो रही होती है मगर सुन नहीं पाता। तो यूं समझें कि कल्ब से अल्लाह अल्लाह की तिलावत का होना अलग काम है और उसको हम खुद भी सुने ये अलग चीज है। इसका ताल्लुक कश्फ के साथ है, इसलिए सालिक को खाने पीने इन चीजों में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, वरना इंसान का कश्फ जो है वो फौरन खत्म हो जाता है। कश्फ बहुत शीशे की तरह नाजुक सी चीज है, बे एहतियाती हुई और वो बंद हुआ। चुनाचे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरत मुजद्दद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, छोटे थे 6-7 साल उम्र थी, खेल रहे थे। हजरत मुजद्दद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो जब जूतों की जगह पर पहुंचे तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ जूते एक साइड पर तरतीब से पड़े हैं और कुछ दूसरी साइड पर तरतीब से पड़े हैं। जब मैं मुतवज्जे हुआ तो मुझे ये कश हुआ कि इधर वाले सईद हैं और इधर वाले शकी हैं, ये असहाबुल यमीन में से हैं, ये असहाबुल शिमाल में से हैं। हजरत फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, ये किसने किया है भाई? लोगों ने कहा जी कि आपके दोनों बेटे छोटे जो थे वो खेल रहे थे और खेलते खेलते वो जूतों को तरतीब में रख के चले गए। हजरत मुजल्ले सलामतुल्लाह परेशान हो गए कि ये इतने छोटे से बच्चे हैं, अगर इस वक्त इनके कश्फ की ये कैफियत है तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उन्होंने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह को खत लिखा कि हजरत मेरे दोनों बच्चों को इतना कश्फ हासिल है कि इस तरह मैंने जूते देखे कि उन्होंने अलग अलग कर दिए। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इनको मेरे पास भिजवा दो। चुनाचे जब उनको भिजवाया गया तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने के बाजार से कोई चीज मंगाई, उस जमाने का बाजार है, बाजार की पकी हुई चीज मंगाई और दोनों बच्चों को खिलाई और उनका कश्फ खत्म हो गया बाजार की चीज खाने से। उस जमाने की बाजार की चीज, और आज के बाजार की चीजों में तो हलाल और हराम का ही नहीं पता होता बहुत सारी चीजों में। तो इसलिए लुकमे की एहतियात बहुत करनी पड़ेगी अगर आप इस जिक्र को सुनना भी चाहेंगे, वरना कल्ब भी जारी हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा, सुनने की नेमत से महरूम रहेंगे। सुनने के लिए बिल्कुल बातें को साफ रखना पड़ता है। तो कल्ब का जारी होना, इसका प्रोसेस ये है कि पहले हरकत होती है, बहुत लतीफ, बहुत जमील और बहुत लजीज, जैसे गुदगुदी का एहसास होता है ना कई मर्तबा, ऐसे बंदे को सीने में एहसास होता है। और बाज तो ऐसे भी हजरात गुजरे कि जिन्होंने कुर्ते के नीचे रुमाल बांधते थे ताकि वो हरकत थोड़ी सी दब जाए और मैं वक्त गुजार लूं, वरना मुश्किल हो जाता था बैठना, तो ऐसा भी करना पड़ता है। लेकिन ये तहर्रुक तज़क्कुर में तब्दील हो जाए, इसका ताल्लुक फिर कश के साथ है, इखलास के साथ है। जितना आप एहतियात करेंगे बोलने में, आंख की एहतियात, खाने पीने की एहतियात, उतना जल्दी ये कश्फ जल्दी नसीब हो जाएगा। अब जब ये कश्फ नसीब हो गया तो कल्ब जारी हो गया, तो आप दिन रात सुबह शाम किसी भी वक्त हैं, कहीं भी हैं, मुस्तकिल एक अल्लाह 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 की आपको आवाज आती रहे, आपकी आंखें सो जाएंगी, आपका दिल नहीं सोएगा। पूरे जिस्म में दिल ही ऐसा उज्व है कि जो जिंदगी में कभी भी बंद नहीं होता, इसके बंद होने का नाम मौत है। तो सारी जिंदगी चलता है। रूहानियत में भी इसी तरह कि जब ये जारी होता है तो फिर इसके नसीब में बंद होना नहीं है, ये चलता रहता है, बल्कि फिर तो मौत पर भी ये बंद नहीं होता, सोने से भी बंद नहीं होता। नबी साहब ने इरशाद फरमाया, तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सो जाती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। तो दिल क्या करता था? अल्लाह को याद करता था। तो ये अल्लाह अल्लाह का जिक्र इंसान को, इसको जिक्र कल्बी भी कहा गया हदीस में, जिक्र सिर्री भी कहा गया, जिक्र खामिल भी कहा गया। हदीस पाक में ये तीन मुख्तलिफ नाम है इसके, जिक्र कल्बी, जिक्र खफी, जिक्र खामिल, ये मुख्तलिफ नाम है। मकसूद सबका एक कल्बी जिक्र है कि जिसको हाफिज़ा भी नहीं सुनते, ये सिर्फ या बंदा सुनता है या उसका परवरदिगार सुनता है, और कोई मखलूक नहीं सुन सकती। साथ बैठने वाला बंदा नहीं सुन सकता, हां करामत के तौर पे अल्लाह किसी को सुनवाना चाहे वो अलग बात है, वरना साथ वाले बंदे को पता नहीं, या करने वाले को पता होता है या जिसका जिक्र हो रहा है उसको पता होता है। इसको कहते हैं मियाने आशिको माशूक रमजेस्त किरामन कातिबी राहम खबर। आशिक और माशूक के अंदर ऐसे इशारे होते हैं, वो एक दूसरे से पैगाम पहुंचा जाते हैं, फरिश्तों को पता भी नहीं चलने देते। चुनाचे फरिश्ते जिक्र नहीं सुनते, फिर वो लिखते कैसे हैं? हदीस पाक में आता है कि जिक्र करने वाले बंदे के जिस्म से उनको खुशबू महसूस होती है, तो वो लिखते हैं खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। क्यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेंगे कि भाई किरामन कातिबीन तुमने क्या लिखा? अल्लाह खुशबू आती थी, मान लगे हां ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान राज था, ये अपने दिल में मुझे याद करता था, अब इस अमल का अजर देना ये भी मेरी ही जिम्मेदारी। तो कल भी जिक्र का अजर क्यामत के दिन अल्लाह अता फरमाए। ये एक नेमत है जो अल्लाह से मांगनी चाहिए कि जिंदगी का कोई दिन ऐसा हो, कुछ लम्हे ऐसे हो, हमारा ये मुर्दा दिल भी जिंदा हो और इससे भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आए। याद रखें कि मुर्दा इंसान को जिंदा कर देना यह छोटी करामत है, मुर्दा दिल का जिंदा कर देना यह उससे बड़ी करामत है। तो हमारे अकाबरीन मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते थे, और कई मर्तबा तो शेख की तवज्जुहात ऐसी होती हैं कि जैसे ही वो उंगली लगा के अल्लाह 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 करते हैं, कल्ब उसी वक्त जारी हो जाता है, गो के सालिक को पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी स्क्रीन के ऊपर जो वो आया हुआ होता है। कई दफा विंड स्क्रीन पे आपने देखा है ना, मट्टी होती है अंदर बैठे को, या वेपर होते हैं तो कुछ बाहर पता नहीं चलता, तो वो स्क्रीन साफ करनी पड़ती है। तो शेख की तवज्जो से कल्ब तो जारी हो गया, स्क्रीन तो इसने खुद साफ करनी है ना, तो उसको मेहनत करके साफ करेगा तो सुनने भी लग जाएगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कामिल मशायख एक ऐसे मर्तबे पे अल्लाह उनको पहुंचा देता है कि गाफिल दिल वाला आता है, उनकी उंगली कल्ब पे लग जाती है, दिल जारी हुए बगैर बंदा पीछे नहीं हटता। ये अलग बात है कि उसको खुद नहीं पता चलता, मगर उसकी ये पहचान है, फिर नेकी को ली जाता है, फिर इंसान नेक बन जाता है, फिर जिंदगी बदल जाती है, फिर दाढ़ी भी रख लेता है, फिर नमाजें भी पढ़ता है। जिंदगी में एक जो तब्दीली महसूस हो रही है, ये कैसे हो रही है? असल में वो दिल जारी हो गया शेख की। इस लतीफे के ऊपर टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पहला सबक है, मगर ये आसानी से हो जाता है। एक नुक्ता ज़हन में रखें, दुनिया भर की किताबें उठा के देख लें, उनका पहला सबक हमेशा आसान होगा। कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसका पहला सबक सबसे मुश्किल हो, नहीं, पहला सबक हमेशा आसान होता है, और ये सिलसिले का पहला सबक है, तो अल्लाह ने इसको भी आसान बनाया है, मुश्किल नहीं है। हाँ, एक नियत करनी पड़ती है, कमिटमेंट करनी पड़ती है कि अल्लाह बस मैं ये नेमत चाहता हूं। ये तो नहीं ना कि इधर मुराकबा किया और बाहर निकल के नीले को भी देखा, पीले को भी देखा, इसको भी देखा, उसको भी देखा, तो सारी असरात खत्म हो। एक बदनजरी महीनों की मेहनत को एक लम्हे में खत्म करके रख देती है, एक बदनजरी। तो झूठ से एहतियात, गीबत से एहतियात, खाने पीने में एहतियात, इन सब चीजों से एहतियात करनी पड़ती है, ये नेमत तब मिलती है। जिन लोगों ने भी हासिल किया, उन्होंने मेहनत बहुत की, और वो मेहनत क्या थी? यही कि जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक बनाया और टाइम लगाया, और अल्लाह ताला फिर ये नेमत दे देते हैं। जब बैठता है इंसान, बैठता है तो बैठने वाले को खाली तो नहीं लौटाते। ये जो कल्ब का जिक्र है, एक दफा ये मिल जाए फिर आगे के सबक आसान और भी हो जाते हैं। क्यों? कि कल्ब के जिक्र की वजह से उसका वजूद हर वक्त नूर को अखज कर रहा होता है। भाई जिस घर में एक बल्ब के अंदर रोशनी आ जाए, तो फिर बाकी कमरों में रोशनी पहुंचाना तो मुश्किल ही ना रहता। पहला कनेक्शन लेना जरा मुश्किल होता है। तो जिसने पहला कनेक्शन ले लिया, और जिसका कल्ब जारी हो गया, फिर रूह का जारी होना, सिर का जारी होना, फिर सब सब आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। फिर वो घर की बात होती है, यहां से कनेक्शन यहां जोड़ दो, यहां से कनेक्शन यहां जोड़ दो, बाहर से तो आ ही गया ना। इसका ऐसा ही मामला है। पहले जमाने में बहुत ज्यादा सफर मुश्किल होता था, घोड़ों पे सफर करते थे, ऊंटों पे सफर करते थे, एक दिन के अंदर 20 मील सफर होता था। चुनाचे हम जीटी रोड पर सफर करते थे, जरनैली रोड जिसे कहते हैं, तो हम गाड़ी में जाते हुए हर 20 किलोमीटर के बाद इधर भी बड़े बड़े पीपल के दरख्त देखते, फिर 20 किलोमीटर बाद इधर देखते, तालाब देखते। तो वो लोग बताया करते थे कि पहले जमानों में काफले जब चलते थे तो हर 20 किलोमीटर के बाद पड़ाव डाला करते थे। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर रोज, तो 1000 किलोमीटर दूर जाना हो तो माशाल्लाह 50 दिन जाने में लगेंगे, 50 दिन आने में लगेंगे। और आज अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी कर दी कि हवाई जहाज बना दिए, तो 1000 किलोमीटर है फर्ज करो कराची, तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है और काम करके 1.5 घंटे में वापस जाता है। दिन के आधे हिस्से में, पूरे दिन में नहीं, सुबह जाते हैं और अपनी मीटिंग करके लाहौर से शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। अब जरा यहां एक नुक्ता सोचने का है कि जो परवरदिगार हम कमजोरों पर इतना मेहरबान है कि हमारी कमजोरियों को देखते हुए उसने जिस्मानी और माती फासलों को इतना आसान कर दिया कि महीनों के फासले घंटों में आ गए, उस परवरदिगार ने रूहानी फासलों को कितना आसान कर दिया। तो रूहानी फासले बहुत, हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि पहले जमाने में कहीं कहीं किसी को जिक्र कल्बी हासिल होता था, और जिसको हासिल होता था मशायख उसकी ज्यारत करने के लिए जाया करते थे कि जी फलां बंदे को कल भी जिक्र हासिल है। मुश्किल था। इस जमाने में अल्लाह ने कमजोरों का ख्याल करते हुए आसानियां कर दी हैं। जितना चाहे कोई हासिल करना कर सकता है, लेकिन इस रास्ते पे कदम रखना पड़ता है और अल्लाह से मांगना पड़ता है। ये जो बाकी चस्के हैं ना, ये छोड़ने पड़ते हैं, जो हम छोड़ने पर राजी नहीं होते। कोई इंटरनेट की मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई सेलफोन की मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई दफ्तर में इधर उधर जो काम करने वालियां हैं उनकी बातों में फंसा हुआ है, कोई लड़कों के अंदर फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं शैतान ने हर बंदे को उलझाया हुआ है, हर बंदे के पांव में जंजीर डाली हुई है। ये किधर परवाज न कर जाए, फंसा के रखो, फंसे हुए। चुनाचे तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बोलने भी एहतियात करते हैं, सुन्नत का भी एहतमाम करते हैं। कहते हैं जी वो क्या करें, नजर की हिफाजत नहीं होती। अच्छा, कई लोगों को नजर की हिफाजत आ जाती है, गुस्सा दिलाते हैं, हो इतना गुस्सा, तोबा तोबा, अलमान व लफीज। तो किसी को किसी गुनाह में उलझाया और किसी को किसी गुनाह में उलझाया। जब तलब हो कि मुझे ये नेमत हासिल करनी है, तो फिर ये सारी चीजों को अल्लाह के लिए छोड़ना पड़ता है। फिक्र लगी हुई हो और फिर इंसान को खामोश रहने का मजा आता है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह सुन रहा होता है। आज तक आपने खाने के तो मजे लिए, भूखा रहने के अपने मजे हैं, भूखा रहने के अपने मजे हैं। मुझे अपनी जिंदगी में 2 ऐसे बंदों से मिलने का मौका मिला। एक आदमी 50 साल से सौम्य दाऊदी रख रहा था, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, 50 साल से। और एक और हमारे जमात के हैं कारी साहब, शायद उनको तो अब 35-40 साल हो गए हैं, वो भी इसी तरतीब से पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सोचें ना कि 30-35 साल से बंदे का मामूल एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार। तो एक दिन पूछ लिया किसी ने कि कारी साहब आपको तो भूख, कहने लगे कि जिस दिन खाता हूं उसकी बजाय जिस दिन रोजा होता है मैं ज्यादा इंशराह महसूस करता हूं। तो एक मजा है भूखा रहने का भी। अभी हम उससे वाकिफ नहीं है, हम तो अभी पेट भरने के मजे से वाकिफ। इसी तरह हम बातें करने के मजे से वाकिफ हैं, चुप के मजे से वाकिफ नहीं है। वो जो चुप का मजा नसीब हो गया ना, फिर बात करना मुश्किल नजर आएगा। फिर इंसान बात नहीं जल्दी करेगा। ऐसे भी लोग थे कि मुराकबा करने बैठते थे तो दो रकत नफल पढ़ते थे, या अल्लाह किसी डिस्टर्ब करने वाले को ना आने देना किसी कोई आते हैं ना, आके जगा देते हैं, उठा देते हैं, ये काम वो काम फलां काम, दो रकत नफल पढ़ के मुराकबे में बैठते थे कि या अल्लाह कोई मुराकबे में से उठाने वाला ना मुसल्लत कर देना, कोई ना भेज देना। कितनी तड़प होगी दिल में, कितना दिल के अंदर शौक होगा इसको हासिल करने का। हमने देखा है बहुत सारी खानकाहों पर कि आज जिक्र कल्बी का तरीका ठीक नहीं समझते लोग। 90% से ज्यादा खानकाहों पर जिक्र कल्बी का तरीका गलत है। 90% खानकाह हमें अपनी जिंदगी में कई ऐसे सालकीन से मिलने का मौका मिला, कोई सांस से कर रहे होते हैं और कोई आवाज से कर रहे होते हैं, और एक जगह हमने देखा कि वो गिरबान खोल के ना, और गिरबान में यूं मुंह करके अल्लाह 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 बस 10 मिनट ऐसे करके, अच्छा जी जिक्र कल्बी हो गया। ये जिक्र कल्बी तो नहीं है। यानी मशायखे सिलसिला भी ऐसे हैं कि उन्होंने लगता है कि सीखा ही नहीं है सबक को। वो चुके वालिद की खानकाह थी तो फिर ये भी पीर बन गए, फिर आगे भी पीर बन गए, फिर पोते भी पीर, हजारों लाखों मुरीदीन के रूहानी पेशवा। तो वो लाखों मुरीदीन के रूहानी पेशवा तो हैं, खुद भी साफ सुथरे, तो उनको क्या पता जिक्र कल्बी क्या होता है। तो वो आने वालों को बस मसरूफ कर देते हैं। कितनी खानकाहें इस वक्त ऐसी हैं कि जहां पर पहला सबक ठीक समझाने वाला कोई नहीं है। मुझे एक आलिम मिले, मुहिब्बीन में से थे, तो मुझसे पूछा उन्होंने, आप नक्शबंदी हैं? मैंने कहा जी। तो तौहीद वजूदी का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, जो हमने अपने बड़ों से सुना था उनको बता दिया। तो वो आलिम तो थे ना, आखिर उम्र गुजरी थी इसमें, तो वो मुतवज्जे हो गए, तो मुतमिन हो गए। फिर मुझसे कहने लगे कि जी आपको शेख ने कैसे सलूक पे चलाया, बताया कि भाई नक्शबंदी सिलसिला असबाक हैं, हजरत मुजद्दिद लिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा अलग अलग करके लिखे हैं, 35 सबक हैं वो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जी कि मैं अपने शेख से बैत हूं 20 साल से, और जब भी मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे पहले दिन कहा कि तुमने दुरुशरीफ पढ़ना है 1000 दफा। मैंने पढ़ा, फिर 1500 दफा, फिर 2000 दफा, फिर 3000 दफा, हत्ता के 11000 दफा रोजाना दुरुशरीफ पढ़ते मुझे 20 साल गुजर गए। और शेख कहता है तुम्हें इसी से सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब यह कि उनके शेख को सिलसिले के सबक का पता ही नहीं था। पहला सबक ही ना दिया 20 सालों में, भाई सबक तो है जिक्र कल्बी, और लगा दिया दुरूद शरीफ पे। भाई दुरूद शरीफ बहुत दर्जे वाली चीज, बहुत अच्छी इबादत, बड़ी नेकियां, बड़ा सवाब, मगर जिक्र कल्बी तो अलग चीज है ना। भाई एक बंदा बुखार का मरीज हो, एंटीबायोटिक देने के बजाय मैं विटामिन खिलाता रहूं तो बुखार उतर जाएगा? बुखार तो नहीं ना उतरेगा। तो कल्बी जिक्र से शहवात ने कंट्रोल होना था, कल्बी जिक्र ही नहीं हासिल हुआ, ये वही नहीं समझाया, तो अंदर की मर्जें कहां निकली 20 साल में। हमारे हजरत सैयद वारसान शाह रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते थे कि जिस तरह एक टेक्नोलॉजी होती है ना, ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, ये सिविल टेक्नोलॉजी है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, वो फरमाते थे तसव्वुफ भी एक टेक्नोलॉजी है। जो सीखेगा वो सिखा सकेगा, जिसने खुद नहीं सीखा वो क्या सिखाएगा। पता ही नहीं होगा कि उसने मुराकबे की सही कैफियत क्या है, तवज्जो किस पे रखनी है, मकसूद क्या है, पता ही नहीं। तो जहां पहला कदम उठाने वाला उठवाने वाला कोई नहीं, वहां फिर 35 अस्वाक करवाना तो बड़ी दूर की बात हो गई। हमें एक मर्तबा शुरू शुरू में पता चला, वो जी फलां मोहल्ले में एक बंदा रहता है, उसको जिक्र कल्ब भी हासिल है, तालिब इल्मी का जमाना था। तो हम दो दोस्त चले गए उसको मिलने के लिए, तो उसको मिले बैठे, बस हम उसको देखे कि वो बैठे बैठे यूं कर रहा था, और ये उसका जिक्र कल्ब भी था। मतलब जिक्र कल्बी तो वो चीज है कि फरिश्तों को नहीं पता चलता, और ये तो माशाल्लाह अंधा भी पता चला ले। और वो कह रहे थे ये मेरा जिक्र है, ये मेरा जिक्र। असल में वो बंदा जिक्र बहुत करता था, मगर अपने मसल को हिलाने की कोशिश करता था, और करते करते वो मसल की एक हरकत उसको हासिल हो गई थी। वो मसल बेरूनी मसल की हरकत थी, वो जिक्र कल्बी नहीं था। तो जिन लोगों को जिक्र कल्बी के हासिल होने का दावा है, उनको भी जिक्र कल्बी हासिल नहीं होता। तो इसलिए आज के जमाने में असबाक पे चलाने वाले मवाके बहुत थोड़े हैं। हमारे हज़रत सैयद वारशाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाज लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, उनको सबक पे ना डाला किसी ने। तो ये जिक्र कल्बी मेहनत से मिल जाता है, लेकिन मांगना पड़ता है, दुआएं बहुत मांगनी पड़ती हैं, तमन्ना बना के। जिस तरह बच्चा लिपट जाता है मां से, मांगता है, पीछे नहीं हटता, थप्पड़ भी खाता है, फिर मां से लिपटता है, ऐसे लिपट के मांगना पड़ता है, तहज्जुद में, तन्हाई में, फला में, फिर ये नेमत नसीब होती है। लेकिन नेमत ऐसी है कि जिंदगी इंसान लगा दे तो भी बुरा सौदा नहीं है, पूरी जिंदगी लगा दे। नेमत बहुत बड़ी है। हम तीन साथी थे और तीनों के लताइफ पे ही असबाक थे, बहुत इब्तदा इब्तदा में। तो एक ही कमरे में रहते थे और कई कई दिन गुजर जाते थे, हमें आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था। कई कई दिन गुजर जाते थे, बस आपस में तय कर लिया था कि इस दिन नाश्ते का इंतजाम इसने करना है, इतने बजे दस्तरखान लगाना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, कमरा इसने बंद करना है, कमरा इसने खोलना है, मस्जिद में जाना है, फलां, जिसकी जो ड्यूटी वो हो गई, उसके बाद बात करने की जरूरत नहीं होती थी। एक कमरे में रहते हुए तीन तीन दिन सिवाय अस्सलामु अलैकुम कहने के कोई जुबान से लफ्ज नहीं निकलता था, हर हर अपने काम में लगा होता था, पढ़ भी रहे हैं और जिक्र भी कर रहे हैं। कई साल एक ऐसी तरतीब रही कि इतना कम बोलना होता था कि अल्फाज को अगर लिखना चाहते तो एक सफे के ऊपर पूरे दिन के अल्फाज आ सकते थे, इतना कम बोलते थे। ये चुप के मजे ऐसे हैं, और सब आपस में मोहब्बत करने वाले, और एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत थी। ये नहीं था कि मोहब्बत नहीं थी, बहुत मोहब्बत थी, मगर कोई जरूरत भी नहीं थी। जरूरत के मुताबिक बात करनी होती है ना, वो सुनने में ही इतना मशगूल होते थे कि जुबान खोल के बात करना एक मुसीबत नजर आती थी। ये चुपके मजे ऐसे हैं। انسان کو ویرانے میں بٹھا دو اور زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو بولنے والا تو کوئی نہیں ہے. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں لیکن یہ لینے پڑتے ہیں, ہر بندے کو نہیں ملتے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, نیک محفلوں میں دعا کرنی پڑتی ہے, تب جا کے یہ نعمت ملتی ہے. اب جب انسان کا قلب جاری ہو گیا تو پھر شیخ اس کو دوسرا سبق دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح. لطیفہ قلب کا سبق ملنے کے بعد انسان کی شہوات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. وہ جو بے قابو کرنے والی شہوتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, نہ کھانے کی, نہ جنسی خواہشات, نہ اور قسم کی کوئی خواہشات. اصل میں ذکر میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ اس مزے کے سامنے دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کو کوئی بندہ کہے یار تمہیں ہم دو تین بسکٹ کھلائیں گے آج تم گھر نہ جاؤ, تو وہ ہنسے گا نا, تم اپنی کینڈی اپنے پاس رکھو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی لذتیں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. جس طرح میاں بیوی کے معاملے میں اور کھانے پینے کی لذت میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں, اتنا فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے قلبی ذکر کی لذت میں اور میاں بیوی کی لذت میں. تو جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے کیوں وہ ترس ترس کے ادھر ادھر دیکھے گا. اللہ تعالی سکون دے دیتے ہیں. تو ذکر قلبی سے ایک باطنی بیماری بندے کی علاج ہو جاتا ہے, اور اس باطنی بیماری کا نام کیا ہے؟ شہوت ہے. شہوت کنٹرول میں. اب دیکھیں نا, کام کیا تو مقصد تو ملا نا, کہ شہوات کنٹرول میں آ گئیں. سبحان اللہ, یہ کیا اعلی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی کرونک ڈیزیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. کرونک ڈیزیز نکل جاتی ہے. نظر کی حفاظت ایسے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب جہاں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد پانچ چار گلیاں دور تھی, تو جب یہ اس مکان میں موو ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے تو ایک گلی میں دیکھا کہ وہاں پر عورتیں ہیں, اس لیے کہ وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھیں روٹیاں بنوا کے لے جاتی تھیں. تو پردے والی بھی ہوتی تھیں اور دوپٹے والی بھی ہوتی تھیں, اور ینگ لڑکیاں بغیر دوپٹے والی بھی بعض ہوتی تھیں, جو لڑکیاں ٹین ایجر ٹائپ ہوتی ہیں. تو اس قسم کا مجمع تھا. پتہ چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر یہ تنور ہے. پھر اس مکان میں چار سال رہا وہ آدمی, اور ہر دن پانچ مرتبہ جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتا اور آتے ہوئے گزرتا. چار سال کے بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو چار سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر نہیں پڑی تھی. پہلے دن جب پتہ نہیں تھا اس وقت ایک نظر پڑی تھی, اور اس کے بعد چار سال میں نظر ہی نہیں اٹھی. اللہ ایسی نظر کی پابندی دے دیتے ہیں. تو یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. अल्लाह अकबर कबीरा। और इसमें अगर माँ बाप की दुआएं भी हों, पीर उस्ताद की दुआएं भी हों, तो फिर ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो अपनी जिंदगी के वक्त को इस खूबसूरत काम के अंदर लगाइए जरा। ये साइड बिजनेस के तौर पर कभी नहीं मिलेगा। आप सोचें ना कि जी मेरा काम तो है बिजनेस करना और शॉप को करना और फैक्ट्री को चलाना और फलां करना, और ये तो सुबह के चंद मिनट और रात के चंद मिनट नहीं। ऐसी फिक्र हो कि लगे 24 घंटे यही काम है। हाँ, इस कैफियत के दौरान फैक्ट्री चलाएं, बिजनेस चलाएं, गाड़ी चलाएं, जहाज चलाएं, क्या मसला है। लेकिन फिक्र लगी हुई हो और ये फिक्र उसके 24 घंटे पर मुहित होनी चाहिए। तब ये नेमत मिलती है। मगर एक दफा ये नेमत मिल जाए तो सुभान अल्लाह, इसकी लज्जतों के सामने दुनिया की लज्जतों को कोई निस्बत ही नहीं है। इसलिए कि ये लज्जत अज किस्म जन्नत की लज्जतों में से है। जैसे आम बंदे औरत की लज्जत से नहीं बाज आ सकते। हदीस में आते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये जो मर्द औरत की लज्जत है, ये जन्नत की लज्जतों को समझने के लिए नमूने के तौर पर दिया है। तो अगर वो नमूने के तौर पर है तो ये जो कल्बी नेमत है और इसके मजे हैं, इसकी लज्जत का क्या कहना। तो इसको हासिल करने के लिए हिम्मत कर लीजिए। तो शुरू में तहर्रुक और बाद में तज़क्कुर। कसनदानस्त के मंजिल गहे आ यार कुजास्त, ई कदर हस्त के बांगे जरसे मी आयत। कोई नहीं जानता कि महबूब की मंजिल कहां है, बस एक घंटी की आवाज आ रही है। तो इब्तदा में इसी तरह एक तहर्रुक की सी आवाज हरकत होती है और फिर वो अल्लाह अल्लाह की आवाज, और ये अल्लाह अल्लाह की आवाज ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ से आ रही है। इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं बंदा मुतय्यन कर सकता। फिर इसमें एक चीज और भी है कि एक जानवर है, उसका नाम है नाफा। उसकी नाफ जो होती है ना, उस नाफ में साल के किसी खास मौसम में मुश्क बनती है। हमें एक मरतबा इसको वेरीफाई करने का शौक हुआ तो हम मक्का मुकरमा में एक इतर वाले की दुकान पर गए। बड़ी दुकान थी, वाइट मस्क बेचते थे, दूसरा मस्क बेचते थे। तो मैंने जाके उनसे ये क्वेश्चन किया कि जी जो असली है मुश्क, वो कैसे मिलता है। उसने कहा मैं दिखा देता हूं। उसने अपना वो दराज खोला और बाकायदा जैसे नाफ होती है ना लंबी, जरा जानवरों की तो ऐसे ही होती है ना, उसने वो दिखाई। उसने कहा ये देखो, इसके अंदर ये मुश्क पड़ा हुआ है। और उसने कहा कि ये मुश्क इतना स्ट्रांग है कि हम इसको 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तब इंसान को मजा आएगा, इतना स्ट्रांग होता है वो। जब मुश्क बनता है ना तो उस जानवर को नशा होता है उन दिनों में। तो मशायख ने लिखा कि ना उसको खाने की परवाह, ना उसको पीने की परवाह, ना उसको नींद आती है। छलांगे लगाता है, इधर भागता है उधर भागता है, एक जज्बे की कैफियत में होता है। तो जैसे मुश्क के मिलने से जानवर पर वो कैफियत आ जाती है, सालिक को जब जिक्र कल्बी नसीब होता है उस पर भी वही जज्बे की कैफियत। न खाने के पीछे, न सोने के पीछे, बस वो एक ही जी चाहता है لگا رہا ہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہا ہوں. تو آج کی اس مجلس میں اس عاجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی. اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے اسی طرح روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں. مگر فرق ہے ایک، قلب کی آواز زیادہ واضح ہوتی ہے اور حرکت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور باقی لطائف کی حرکت زیادہ لطیف ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی. اس لیے عام بندوں کو، عام دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس قلب کی حرکت کی طرف توجہ رکھو اور ذکر کی طرف، اگر وہ مل گیا تو باقی کشف کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سننا وہ مشکل ہوتا ہے. ہاں پھر آخر پہ آتا ہے کام، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلبیہ. جب لطیفہ قلبیہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار. تو سلطان الاذکار ساتواں سبق، اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے، رواں رواں ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَ. جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو بھئی اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک چیز بنائی ہوئی چیز ہے نا، تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے، ہم نہ سنے تو الگ بات ہے. تو سلطان الاذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت ہے. ایسا بندہ اگر ساتوں لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو ساتوں کا ذکر بھی سن سکتا ہے، مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر تو یوں سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے. اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں. یہ تو جیسے پینٹ کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا، یہ تو گراؤنڈ ورک ہے. اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو معرفتیں ملتی ہیں، جو نکات کھلتے ہیں، پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی. تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے وہ تو کچھ اور. اب دیکھیں ہمارے سلسلے میں سبق ہیں کمالات نبوت، کمالات رسالت، مراقبہ، حقیقت صلات، حقیقت قرآن مجید، حقیقت کعبہ ربانی. اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقتیں ان کی کھلتی ہوں گی؟ تو اصل تو وہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنی چاہیے، یہ تو ابتدا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مداری ہوتا ہے نا تو وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تماشا دیکھیں. تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی سلوک کے شروع میں ڈگ ڈگی رکھ دیا کہ میرے بندے آ جائیں اور اندر کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اصل تو نعمتیں پھر بعد کے کمالات ہیں نا. پھر انسان کو وہ کیفیت ملتی ہے ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.